नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अहम स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं, समस्याएं आज की, समाधान कल के। ये पुस्तक जो 1988 से 90 के बीच पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने रची थी, उनकी क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला का एक हिस्सा है
जी।
और पूज्य गुरुदेव ने, आपको याद होगा, वसंत पंचमी 1990 को कहा भी था कि मेरा ज्ञान शरीर ही जिंदा रहेगा।
हाँ हाँ,
सब बच्चों से कहिएगा कि मेरे ज्ञान शरीर को मेरे क्रांतिधर्मी साहित्य के रूप में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें।
बिल्कुल, उनका आग्रह था कि ये विचार फैलें।
तो आज हम यही कोशिश कर रहे हैं समझने की कि पूज्य गुरुदेव ने उस समय क्या समस्याएं देखी, क्या समाधान सुझाए, और खासतौर पर ये शिक्षा और विद्या का जो फर्क उन्होंने बताया उस पर ध्यान देंगे।
हाँ, और ये विश्लेषण आज भी मतलब कितना प्रासंगिक है, ये देखने वाली बात है। पूज्य गुरुदेव का जो मूल तर्क था वो ये कि हमारी ज्यादातर मुसीबतें बाहरी हालात की वजह से उतनी नहीं है।
अच्छा।
जितनी कि मनुष्य की जो चेतना है वो अपने रास्ते से भटक गई है, उसकी वजह से है।
चेतना का भटकाव, इसको थोड़ा और खोलेंगे, पूज्य गुरुदेव कैसे समझाते हैं इसे?
देखिए, वो कहते हैं कि ये जो प्रगति की दौड़ है ना, इसमें इंसान जैसे खुद को ही भूल गया है। मतलब जो दिख रहा है, जो भौतिक है, बस उसी को सब कुछ मान बैठा।
हाँ, ये प्रवृत्ति तो दिखती है।
और अपना जो असली स्वरूप है, जिसे उन्होंने बहुत खूबसूरती से कहा, भटका हुआ देवता।
भटका हुआ देवता,
हाँ, यानी हमारी जो मूल दिव्यता है, हमारी जो असीम क्षमताएं हैं, उन्हें हम भूल गए हैं, और यही उनके अनुसार सारे संकट की जड़ है।
और इसके नतीजे, वो भी उन्होंने गिनाए होंगे?
बिल्कुल गिनाए हैं, साफ दिखते हैं, जैसे प्रकृति का अंधाधुंध शोषण है ना, प्रदूषण, जंगल कट रहे हैं, फिर जरूरत से ज्यादा प्रजनन, जनसंख्या विस्फोट, फिर ये अपव्यय, कितना पैसा बर्बाद होता है नशेबाजी में, दिखावटी फैशन में, खर्चीली शादियों में, और धन का असमान वितरण, वो तो है ही, और एक बहुत बड़ी बात, नारी शक्ति की जो क्षमताएं हैं उनकी अनदेखी।
सही कहा।
ये सब बाहरी लक्षण हैं, पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इनकी जड़ वही है, चेतना का पतन। उन्होंने तो यहां तक कहा कि अगर समाज में थोड़ी सेना जैसी समानता आ जाए, मतलब एक औसत नागरिक स्तर का जीवन हो, तो ये जो धन कुबेर बनने की होड़ है वो भी रुकेगी, शालीनता बढ़ेगी।
अच्छा, यहीं पर शायद वो शिक्षा और विद्या वाली बात आती है।
हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है उनका। वो कहते हैं कि जो आज की शिक्षा प्रणाली है वो ज्यादातर क्या दे रही है, जानकारी।
जानकारी जैसे इतिहास, भूगोल,
हाँ, या और भी विषय जो शायद असल जिंदगी में काम ही ना आए। और मुख्य लक्ष्य क्या बन गया है, नौकरी पाना, बस इसी को उन्होंने शिक्षा कहा।
और विद्या,
इससे पहले उन्होंने एक रूपक दिया था बड़ा जबरदस्त।
हाँ, वो राजकुमारी और नौकरानी वाला।
जी वही, कि जैसे नौकरानी यानी शिक्षा, उसने राजकुमारी यानी विद्या के कपड़े पहन लिए हैं और उसकी जगह ले ली है, और असली राजकुमारी विद्या वो कहीं खो गई है।
ये तो बहुत गहरी बात है।
हाँ, क्योंकि विद्या क्या है, विद्या सिर्फ जानकारी नहीं है, विद्या है व्यक्तित्व का निर्माण।
अच्छा।
प्रतिभा को निखारना, सही नजरिया विकसित करना, मानवीय मूल्य मतलब गुण, कर्म, स्वभाव, इनको गढ़ना, ये विद्या है। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि विद्या के बिना सिर्फ शिक्षित व्यक्ति, जिसके पास जानकारी तो है, डिग्री है, वो समाज के लिए ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है।
खतरनाक कैसे?
उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, ब्रह्म राक्षस, मतलब ज्ञान तो है पर विवेक नहीं, सद्गुण नहीं, तो वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर सकता है। और इसी विद्या की जो उपेक्षा हुई है वही आज की समस्याओं का मूल कारण है। यही विद्या है जो इंसान को उसकी वो जो भटका हुआ देवता वाली स्थिति है ना, उससे जगा सकती है।
तो फिर समाधान कहां से आएगा? क्या सिर्फ सिस्टम बदलने से, नियम बदलने से बात बन जाएगी?
पूज्य गुरुदेव का जोर इस पर कम है, वो बाहरी बदलावों से कहीं ज्यादा दृष्टिकोण में परिवर्तन पर बल देते हैं।
दृष्टिकोण में परिवर्तन?
हाँ, जैसे उनका वो सिद्धांत, सादा जीवन, उच्च विचार, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। अगर हम सादगी अपनाएंगे तो फिजूल खर्ची रुकेगी, संसाधनों पर दबाव कम होगा।
यानी शुरुआत अंदर से करनी होगी, अपने आप से।
निश्चित रूप से, दो बातें प्रमुख है, आत्म परिष्कार यानी खुद को सुधारना, और सत प्रवृत्तियों का संवर्धन यानी समाज में अच्छी चीजों को, अच्छी आदतों को, अच्छे विचारों को बढ़ावा देना।
लेकिन आजकल निराशा का माहौल बहुत है।
पूज्य गुरुदेव निराशावाद को बिल्कुल नकारते हैं, वो नव सृजन की चेतना की शक्ति में बहुत विश्वास रखते हैं। उनका तो ये तक कहना था कि मनुष्य सिर्फ अपने भाग्य का ही नहीं बल्कि अपने सोच और कर्म से पूरे युग का माहौल बना सकता है, चाहे सत्युग हो या कलयुग।
वाह, और ये देव मानवों के अवतरण की बात भी उन्होंने कही है, उसका क्या अर्थ?
ये उनकी एक बहुत आशावादी दृष्टि है। उनका मानना था कि इस परिवर्तन के दौर में ऐसी जागृत आत्माएं सामने आएंगी जिन्हें उन्होंने देव मानव कहा।
देव मानव?
हाँ, मतलब ऐसे लोग जिनकी चेतना जाग चुकी है, और ये लोग महाकाल की अदृश्य अग्नि शिखा से प्रेरित होकर, यानी समय की जो परिवर्तनकारी शक्ति है या कह लें ईश्वरीय प्रेरणा, उससे प्रेरित होकर मिलकर इस युग परिवर्तन का नेतृत्व करेंगे। ये सिर्फ सिस्टम बदलना नहीं होगा बल्कि चेतना का रूपांतरण होगा। उनका कहना था कि जैसे इंसान ने परमाणु में छिपी ऊर्जा को पहचाना, वैसे ही जब वो अपनी अंदर की शक्तियों को पहचानेगा तो वो छोटे मोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर बहुत महान बन सकता है।
तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो सारी यही निकलता है कि स्थायी समाधान के लिए सिर्फ बाहरी उपायों पर निर्भर नहीं रह सकते।
बिल्कुल नहीं,
असली बदलाव तो चेतना के स्तर पर लाना होगा,
जहाँ विद्या यानी विवेक, चरित्र, सद्गुण को हम सिर्फ शिक्षा यानी जानकारी और कौशल से ऊपर रखें, उसको प्राथमिकता दें। एकदम सही कहा आपने, यही निचोड़ है। और शायद यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए।
जरूर।
कि आज के समय में पूज्य गुरुदेव ने जो समस्याएं 40 साल पहले बताई थीं, जैसे मान लीजिए पर्यावरण का संकट या सामाजिक असमानता, इनसे निपटने के लिए समाज में विद्या का व्यवहारिक विकास कैसे किया जाए, कैसे हम चरित्र निर्माण और विवेक को शिक्षा का अभिन्न अंग बना सकते हैं?
ये बहुत जरूरी सवाल है।
शायद पूज्य गुरुदेव के इसी ज्ञान शरीर को, उनके इस क्रांतिधर्मी साहित्य को समझना और फैलाना इसी दिशा में एक पहला कदम हो सकता है।
बिल्कुल, बहुत विचारणीय बात है।